नमस्कार भारत, तारीख 26 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर लगाया युद्ध के ऐलान का आरोप, व्हाइट हाउस ने बताया बेतुका बयान।
We've not declared war on North Korea, and frankly, the suggestion of that is absurd.
संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच वार पलटवार का एक और दौर, भारत ने कहा
This is a real and not a fake picture of Lieutenant Umar Fayyaz, a young officer from the Indian state of Jammu and Kashmir.
और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं को लेकर जारी राजनीति के बीच क्या सोचते हैं वाराणसी के रचना धर्मी?
उन्होंने तो सीधे प्रतिरोध मार्च निकाला था, विरोध किया था, वे उसके खिलाफ हैं इस सोच के।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और अब उसके पास अमेरिकी विमानों को कोरियाई वायु क्षेत्र से बाहर भी मार गिराने का अधिकार है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इस कथन को बेतुका कहकर खारिज कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था कि कोरियाई नेतृत्व बहुत दिनों तक बचा नहीं रहेगा। इसी बीच दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से तनाव को और न बढ़ाने की अपील की है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आजादी को लेकर हुए जनमत संग्रह के बाद अब वोटों की गिनती की जा रही है। बगदाद स्थित इराक की केंद्र सरकार के भारी विरोध के बावजूद ये जनमत संग्रह कराया गया है। इराक सरकार ने इसे अवैध करार दिया है। कुर्द आबादी वाले ईरान और तुर्की जैसे देशों ने भी इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। माना जा रहा है कि नतीजा आजादी के पक्ष में रहेगा, हालांकि इसके बावजूद अलग होने की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होगी। बड़ी कुर्द अल्पसंख्यक आबादी वाले देश तुर्की ने इस जनमत संग्रह को अस्वीकार्य कहा है। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि वो इराकी कुर्दिस्तान के साथ तुर्की की सीमा को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा करने से कुर्द तेल का निर्यात भी बंद हो जाएगा। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा,
sınırlandıran şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var. Bu hafta içerisinde
सीमा पर सिर्फ तुर्की से इराक जाने की ही अनुमति है। हम तुरंत नए उपायों का ऐलान करेंगे और उसी के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे और सीमा पर आना जाना बंद कर दिया जाएगा। हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, हम उन्हें अलग से लागू करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उनकी पार्टी दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी के साथ गए लोगों को फिर से अपनी ओर खींचने के लिए दक्षिणपंथ की ओर नहीं बढ़ेगी। मर्केल ने कहा कि वो उन लोगों का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करेंगी जिन्हें लगा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रवासी विरोधी धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी की चुनावी कामयाबी की वजह से मर्केल की पार्टी सीडीयू के पास गठबंधन सहयोगी नहीं है। मर्केल ने कहा है कि वो एक स्थिर सरकार बनाना चाहती हैं और इसके लिए लिबरल और ग्रीन पार्टी के अलावा पूर्व सहयोगी सोशल डेमोक्रेट से भी बात करेंगी। मर्केल ने कहा,
Wir werden natürlich das Gespräch suchen, sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen, aber ich
हाँ, हम फ्री डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी से बात करेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम सोशल डेमोक्रेट से भी बात करेंगे। जर्मनी के लिए एक स्थिर सरकार देना महत्वपूर्ण है। एसपीडी ने जो कल कहा है वो मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आपस में बात करनी चाहिए और ये भावना दोनों पार्टियों की कार्यकारिणी में है। ब्राज़ील की सरकार ने अमेज़न के विशाल सुरक्षित क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की अनुमति देने के अपने विवादित फैसले को वापस ले लिया है। करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका डेनमार्क के बराबर है और माना जाता है कि यहां सोना और अन्य खनिज बहुलता में उपलब्ध हैं। पिछले महीने व्यापक आलोचना के बाद सरकार ने अपने फैसले को सुधार करते हुए कहा था कि सुरक्षित और आदिवासी आबादी वाले इलाकों को नहीं छुआ जाएगा। हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि संरक्षण को लेकर किसी भी बदलाव के लिए ब्राज़ील की संसद की अनुमति जरूरी है। मई में अमरीकी जेल से रिहा हुई खुफिया जानकारी लीक करने की दोषी पाई गई पूर्व अमरीकी सैनिक चेल्सी मैनिंग का कहना है कि कनाडा ने उनका आगमन रोक दिया है। उन्होंने कनाडा की सरकार से मिला एक पत्र ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि जासूसी के आरोप में अमरीका में सजा याफ्ता होने की वजह से वो कनाडा आने के अयोग्य हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। सितंबर के महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, उत्तर भारत में मौसम बदलने लगा है। दिल्ली में फिलहाल तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में पारा चढ़ा हुआ है। हम बात सिर्फ मौसम की नहीं कर रहे हैं, म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक रोहिंग्या संकट को लेकर उबाल है, तो अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तीखी बयानबाजी को लेकर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। नमस्कार भारत में हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच छिड़ी जुबानी जंग से। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने कल अमेरिका पर युद्ध के ऐलान का आरोप लगाया। हम याद दिला दें कि री योंग वही नेता हैं जिन्होंने बीते हफ्ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद कहा था कि अगर वो सोच रहे हैं कि वो कुत्तों के भौंकने जैसी आवाज़ से हमें डरा देंगे तो ये साफ है कि वो सपना देख रहे हैं। उनके ताज़ा बयान को भी अमरीका ने बेतुका बताया है। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ दिलनवाज पाशा।
अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच बीते कई सप्ताह से जारी तीखी जबानी जंग अब युद्ध के मौखिक ऐलान तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान उसकी ओर भेजकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने कहा है कि उत्तर कोरिया के पास अपनी आत्मरक्षा के सभी अधिकार हैं। न्यूयॉर्क में बोलते हुए री योंग हो ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से ये बात याद रखे कि अमेरिका ने पहले हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सभी देशों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। चूंकि अमेरिका ने हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, अब हमारे पास प्रतिक्रिया देने के सभी अधिकार हैं, जिसमें अमरीकी बमवर्षक विमानों को मार गिराने का अधिकार भी शामिल है, भले ही वो हमारे हवाई क्षेत्र में ना घुसे हों। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इस कथन को बेतुका कहकर खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा, हमने उत्तर कोरिया के खिलाफ युद्ध का कोई ऐलान नहीं किया है, स्पष्ट रूप से यह सुझाव ही बेतुका है। उत्तर कोरिया की अमरीकी विमान को मार गिराने की धमकी के जवाब में सारा हकाबी सॉन्डर्स ने कहा,
इट्स नेवर एप्रोप्रिएट फॉर अ कंट्री टू शूट डाउन अनदर कंट्रीज एयरक्राफ्ट व्हेन इट्स ओवर इंटरनेशनल वाटर्स।
जब किसी देश का विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हो तो किसी दूसरे देश के लिए उसे मार गिराना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य अभी भी वही है, हम कोरियाई प्रायद्वीप को शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु हथियारों से मुक्त करना चाहते हैं। हमारा ध्यान इसी पर है और हम हर संभव आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाकर ऐसा करना चाहते हैं। वहीं अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया अपनी उकसावे की कार्यवाहियां जारी रखता है तो पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को उत्तर कोरिया से निपटने के सभी विकल्प मुहैया कराएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि भड़कीली बातें घातक गलतफहमियों में बदल सकती हैं और मौजूदा संकट का समाधान सिर्फ राजनीतिक समाधान ही हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के दूत ने कहा है कि हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और ये किसी के भी हित में नहीं है, हम चाहते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण रहे। पिछले कुछ समय से अमेरिका और उत्तर कोरिया एक दूसरे पर जबानी हमले कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तीखी होती जुबानी जंग के बावजूद दोनों देशों के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना बहुत कम है।
ये थे दिलनवाज पाशा। उधर संयुक्त राष्ट्र के महाधिवेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जारी है। सोमवार यानी कल किसने क्या कहा, बता रहे हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
सबसे पहले तो आपको याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत की राजनयिक इनम गंभीर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा था। फिर 23 सितंबर यानी शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने महासभा में अपने भाषण में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। सुषमा स्वराज के भाषण के जवाब में पाकिस्तान की दूत मलिया लोधी ने एक चित्र दिखाते हुए कश्मीर में आम लोगों पर जारी हिंसा का बयान किया था, लेकिन वो चित्र कश्मीर के बजाय फलस्तीन का निकला। कल सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के आखिरी दिन भारत की राजनयिक पुलोमी त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान की दूत ने जनरल असेंबली के सामने गलत तस्वीर पेश की। उनका कहना था कि पाकिस्तानी दूत ने एक झूठी तस्वीर, एक झूठी कहानी पेश करने के लिए दिखाई। भारत की राजनयिक ने महासभा में कश्मीर में मारे गए एक भारतीय फौजी उमर फैयाज की तस्वीर उठाकर दिखाई और कहा, यह है असली चित्र जो सही तस्वीर पेश करता है और जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की करतूत दिखाता है।
दिस इज अ रियल एंड नॉट अ फेक पिक्चर ऑफ लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, अ यंग ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान का असली चेहरा अब किसी से छुपा नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत एक तस्वीर के पीछे नहीं छुप सकता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के हजारों चित्र मौजूद हैं। उनका कहना था कि कश्मीरी लोग हार नहीं मानने वाले।
Kashmiris will never be defeated. Kashmiris will take bullet after bullet.
भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र में वाक युद्ध का पुराना इतिहास है, लेकिन अब जिस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग हो रहा है उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में जुबानी जंग से भारत और पाकिस्तान किसी को भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला। वैसे भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण के अलावा भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में आतंकवाद और पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों के आतंक से लड़ने और उसे रोकने के लिए सभी देशों से मिलकर काम करने पर जोर दिया। इस प्रकार की बैठकों में विभिन्न देशों को हालात से अवगत कराकर भारत की ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान को अलग थलग कर सके। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बात भारत की करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। विश्वविद्यालय की छात्राओं के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन विरोध की हर आवाज को रोकने की तैयारी में दिख रहा है। इस क्रम में कल सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बनारस की पुलिस ने करीब 10 घंटे तक हिरासत में रखा। पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
तीस्ता सीतलवाड़ को जौनपुर जाना था, जहां जाने के लिए उन्होंने वाराणसी की फ्लाइट ली थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई कि वो बीएचयू जा रही हैं। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया। खुद तीस्ता बताती हैं,
मैं सुबह 9:30 बजे बनारस पहुंची और जैसे मैं निकल ही रही थी तो मुझे पूरे मतलब कम से कम 20-25 पुलिस वाले ने घेर लिया और वहां जाने नहीं दे रहे थे।
तीस्ता सीतलवाड़ का कहना था कि बनारस को लेकर प्रशासन इतना चौकन्ना है कि मुझे दिन भर पुलिस लाइन में बैठाए रखा। वो कहती हैं,
1.5 घंटा हम पुलिस लाइन के बाहर सड़क पे रहे, उसके बाद पुलिस लाइन के कंपाउंड के अंदर शाम के 7:30-7:30 बजे तक हमको बैठाया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई की चर्चा तुरंत सोशल मीडिया पर होने लगी, बावजूद इसके उन्हें रिहा नहीं किया गया। तीस्ता सीतलवाड़ को बाद में एयरपोर्ट से पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें सारे दिन ही हिरासत में रखा गया। वाराणसी सदर के SDM सुनील कुमार,
तो आने से कहां रोका गया? आने नहीं रोका गया ना, वो तो ऐसा था ना, उनको जब गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया तो बॉन्ड लगाया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के नहीं, लोगों ने कहा था कि कोई इस तरह से लाइन ऑर्डर को नहीं भड़काने का प्रयास करेंगे, उन्होंने कहा लिख के दिन वो तब छोड़ दिया उनको और वो चली गई। उनका कार्यक्रम जौनपुर था तो जौनपुर चली गई।
इससे पहले रविवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को भी एयरपोर्ट से बनारस शहर आते हुए हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद राज बब्बर वहीं धरने पर बैठ गए, बाद में प्रशासन को उन्हें वहां से हटाना पड़ा। सोमवार को दिनभर बीएचयू गेट के सामने समाजवादी पार्टी के युवा नेता छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच बीएचयू की छात्राओं के समर्थन में जहां राजनीतिक दल भी कूद चुके हैं, वहीं शहर के दूसरे कॉलेज के छात्र भी उनके समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC वाराणसी।
बीएचयू में छात्राओं का आंदोलन कई मायनों में अलग है। इस आंदोलन ने सिर्फ राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं खींचा है, बल्कि बनारस की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं से जुड़े रचनाधर्मी भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। जाने माने साहित्यकार और BHU के पूर्व प्रोफेसर काशीनाथ सिंह भी इनमें शामिल हैं। BBC हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने काशीनाथ सिंह से बात की।
पहला आंदोलन रहा है जिसमें अगुवाई लड़कियों ने की और लड़कियां आगे बढ़कर आईं, धरने पर इसलिए बैठी थी कि उस रास्ते से जाने वाले से प्रधानमंत्री जो इस क्षेत्र के सांसद हैं तो उनका हक बनता था कि अपनी बातें उनसे कहें। तो खैर रास्ता तो बदल दिया उन्होंने, चुपके से दूसरे रास्ते से चले गए। उनकी समस्या ये थी कि उनकी शिकायतें न वाइस चांसलर सुन रहा था न प्रशासन सुन रहा था। वे कहना चाहती थी देश के प्रधानमंत्री से, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे चुके हैं।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी कमजोरी नहीं है क्या? वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, जो कुलपति हैं, ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पाए कि लड़कियों को और लड़कों को बराबर समझा जाए?
सबसे बड़ी समस्या यही थी। छेड़खानी तो हुई थी और वो छेड़खानी एक बहाना थी, बहुत दिनों से गुबार उनके भीतर भरा हुआ था। ये एक मध्ययुगीन वातावरण यहाँ बना हुआ है एक जमाने से और चल रहा है
कि शहर के जो लोग हैं, शहर के आम लोग, वो भी कहें कहीं न कहीं उनका भी एक खासा बड़ा हिस्सा ये मानता है कि लड़कियों को तो एक दायरे में ही रहना चाहिए और लड़कियों को तो एक खास तरह से व्यवहार करना चाहिए। क्यों लड़कियां धरना दे रही हैं? इस तरह का भी उस शहर से निकल रही है ये बात खबरों में।
ये इस तरह की सोच वाले लोग हमेशा रहे हैं, अब भी है। ये ब्राह्मणवादी सोच है, सामंतवादी सोच है। इस बदले हुए जमाने में बहुत सारे लोग हैं चाहते जींस न पहने लड़कियां, जबकि पहनना चाहती है, वे उन्मुक्त वातावरण चाहती है, अपनी अस्मिता चाहती हैं, वो लड़कों जैसी बराबरी चाहती हैं। उनको नहीं देने वाले उनके गार्जियन से भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी असंतुष्ट हैं भीतर से कहीं न कहीं। इस समय सत्ता में राजनीतिक पार्टी है, वो खुद इस मान्यता पर विश्वास करती है, पुरानी सोच पर।
जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि विश्वविद्यालय को वहां से जो राष्ट्रवादी सोच है उसको हटने नहीं देंगे, उसको खत्म नहीं होने देंगे। इस बयान का क्या अर्थ निकालते हैं आप?
बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, उनकी यही ट्रेनिंग रही है और इसी सोच के है। इसी कारण से जो लड़कियां आंदोलन कर रही थी उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा था। ये ऐसा आरोप है जो किसी पर भी चस्पा किया जा सकता है। राष्ट्र को प्रेम, अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम यही है तो ईश्वर ही मालिक है इस देश का।
वहाँ जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया आई है?
उन्होंने तो सीधे प्रतिरोध मार्च निकाला था, विरोध किया था। वे उसके खिलाफ हैं इस सोच के। वे चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों को बराबर का हक मिले। जो लोग लड़के और लड़की के को साथ देखने के विरोधी हैं, वो साथ भी नहीं देखना चाहते।
मान लीजिए लड़कियों को पूरी छूट दी जाए, खुली छूट दी जाए कि आप कितने बजे हॉस्टल में आएंगी, कितने बजे जाएंगी, आपकी मर्जी है। आप क्या खाएंगी पहनेंगी, आपकी मर्जी है। कोई अंकुश ना हो, कोई उन पर निगहबानी ना करे। समाज को इससे खतरा क्या हो सकता है?
हमारा ख्याल है कि इस नगर की लड़कियों के पास इतना विवेक है, खुद अगर उन पर विश्वास करें हम तो, इतनी समझ उनमें है और इतना विवेक है कि वे खुद अपने से तय कर सकती हैं कि कहां कब बाहर जाना है, किसके साथ बाहर जाना है। वे स्वयं भी तय कर सकती हैं, उन पर विश्वास हम क्यों नहीं करते हैं।
भावना आ जाती है कि अगर लड़कियों को छूट दे दी गई तो आसमान टूट पड़ेगा या समाज में उथल पुथल हो जाएगी, कुछ इस तरह का भय ये जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में भी होता है, उनके भीतर भी होता है।
होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये अंकुश की बातें तो तब आती हैं जब मौका दे के उन्हें देखें कि क्या होता है क्या न होता है। सब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जैसा हम परिवार में रहते हुए या परिवार के बाहर बना सकते हैं, विश्वविद्यालय में भी बना सकते हैं, लेकिन हम जब जबरदस्ती बांधे रखेंगे तो जाहिर है कि उनके भीतर विद्रोह पैदा होगा ही उस बंधन के खिलाफ।
ये थे काशीनाथ सिंह और उनसे बात कर रहे थे BBC हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी। बनारस की बात आज दिल्ली में भी होगी। BHU के कुछ छात्रों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च आयोजित किया है। और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। दिलनवाज पाशा मौजूद हैं स्टूडियो में जानकारी देने के लिए। दिलनवाज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये डंडे मातरम आपको पता है?
जी, कल BBC हिंदी ने कार्टून प्रकाशित किया था, कीर्तिश हमारे कार्टूनिस्ट हैं उन्होंने, और ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। मैंने अपनी वॉल पे लगाया तो कई लोगों ने शेयर किया और BBC हिंदी के पन्ने से तो इसको हजारों लोग शेयर कर चुके हैं, शायद व्हाट्सएप में भी लोगों
को। श्रोताओं को बता दीजिए कि डंडे मातरम एक कार्टूनिस्ट जो हमारे कीर्तिश हैं, उन्होंने एक कार्टून बनाया है कि एक UP पुलिस का जवान एक युवती के पीछे डंडा लेकर
दौड़ रहा है। ये लाठीचार्ज को दर्शा रहा है जो बीएचयू में हुआ है। एक खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, प्रधानमंत्री ने कल दो बड़ी बातें कहीं। पहली ये, अगले साल दिसंबर तक हर घर होगा रोशन, और दूसरी, भ्रष्टाचार में फंसे तो रहम नहीं। ये दोनों बयान प्रधानमंत्री के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात की यात्रा शुरू की है और उनका स्वागत करने हार्दिक पटेल पहुंचे, ये बता रहा है आज का हिंदुस्तान टाइम्स। ये खबर अलग,
यानी नया समीकरण बनता दिख रहा है।
जी बिल्कुल, दिल्ली में जो लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं वो जान लें, अगले महीने यानी 10 अक्टूबर से किराया महंगा हो जाएगा। आज का दैनिक भास्कर ये बता रहा है, और किराया जो है 10 रुपये तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जनसत्ता में है, हकलाने पर छात्र की शिक्षिका ने पिटाई मौत, तो ये दुखद खबर है। ऐसा भी हमारे देश में स्कूलों
से जुड़ी खबरें आजकल ज्यादा आ रही हैं।
जी बिल्कुल, और एक और खबर भी ऐसी ही है, ब्लू व्हेल गेम ने एक और जान ले ली है, आज का जनसत्ता बता रहा है। ये पंचकुला की घटना है जहां करण ठाकुर नाम के छात्र ने आत्महत्या कर ली है, और इसके पीछे ब्लू व्हेल का जो खेल चल रहा है उसको बताया जा रहा है। बहुत से श्रोताओं को याद होगा, दुनिया की सबसे वजनी महिला ईमान भारत आई थी, मुंबई आई थी सर्जरी कराने के लिए, उनका कल निधन हो गया है। फिलहाल जो वो विदेश में इलाज करा रही थी, और ये खबर आज के अखबारों में है। इसके अलावा एक और खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताई है, पिछले 3 सालों के दौरान जो भाजपा के प्रस्ताव हैं उसमें मोदी का नाम 191 बार आया है, और इसी की तुलना में अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम 2000 से 2004 के बीच सिर्फ 66 बार भाजपा के प्रस्तावों में आया है। तो ये
गिनती करने वाले लोग बड़े दिलचस्प हैं।
जी बिल्कुल, बहुत ये एक रोचक आंकड़ा है जो ये भी बताता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हावी हैं।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सौभाग्य योजना की शुरुआत की, जिसका जिक्र अभी दिलनवाज ने किया था। क्या है ये योजना, बता रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद शाहिद।
कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल भवन और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
बिना बिजली वाले इन घरों में जब बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा, तभी उनके लिए सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं।
योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, साथ ही 26 करोड़ एलईडी बल्ब भी बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना में 16,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, सरकार गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बहाने पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
अब बात रोहिंग्या संकट की। पूरी दुनिया इस संकट पर चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन किस हाल में है बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुसलमान, बता रही है बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्लियाल।
बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व का एक तटीय शहर है कॉक्सेस बाजार, जहां के खूबसूरत समुद्री तटों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। हरे भरे पेड़ हैं और दूर दूर तक नीला हरा पानी। लेकिन कॉक्सेस बाजार से बस करीब एक ही घंटे की दूरी पर कुटापलोंग नाम का एक शरणार्थी कैंप है, जहां का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहां करीब 1,00,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। पूरा कैंप बांस और प्लास्टिक की छतों से बना है। मॉनसून के चलते हर जगह कीचड़ ही कीचड़ और हर कोने पर गंदगी, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। इसी कैंप से थोड़ी ही दूरी पर हमारी मुलाकात हुई रशीदा से, वो भी एक रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो अपने परिवार के साथ म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आई हैं। रशीदा गर्भवती हैं, वो किसी भी वक्त जन्म दे सकती हैं।
दरिया सर माता की दरिया सरो त्या मतो ने मानचन हा शकदा नता की मुझे यहाँ आने के लिए 7 दिन चलना पड़ा। मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें वहाँ से भागना ही था। रशीदा का कहना है कि उन्हें तब भागना पड़ा जब म्यांमार की सेना और कट्टरपंथी बौद्ध लोगों ने उनके गांव पर हमला किया और उसे जलाकर राख कर दिया। लेकिन बांग्लादेश आने के बाद भी उनकी मुश्किलों का कोई अंत नहीं है। मुझे बहुत फिक्र है, हमें खाने को नहीं मिल रहा। यहाँ ना तो चावल है, ना दाल, ना सब्जी, कुछ भी नहीं। मुझे भूख लगी है। रशीदा और उनका परिवार एक प्लास्टिक की छत के नीचे रह रहा है। उनका बच्चा बीमार है और पति को पीलिया हो गया है। रशीदा की तरह लाखों शरणार्थी इसी तरह की हालत में रह रहे हैं। रशीदा से मिलने के बाद हम फिर कुछ ऐसी महिलाओं से मिले जो हाल फिलहाल ही म्यांमार से भाग कर आई हैं। इन सब का कहना था कि उन सभी के घरों पर हमला किया गया था। तयोबा बेगम बताती हैं कि उनके परिवार के 7 लोगों की सैनिकों ने हत्या कर दी। वो अपने परिवार के मारे गए सदस्यों के एक एक करके नाम गिनाती हैं।
सैनिक आए और उन्होंने पुरुषों पर गोली चलानी शुरू कर दी। कई लोग मारे गए। फिर वो घरों में घुस गए। उन्होंने महिलाओं को भी मारा। फिर घरों के दरवाजे बंद कर दिए, उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी।
नशीमा खातून भी उसी गांव की रहने वाली हैं, फतेह का रावजा। उन्होंने हमें ये बताया।
हम पहाड़ों की तरफ भागे। हम वहां 1 हफ्ते तक छुपे रहे। हम सब भूखे थे। फिर एक आदमी आया। हमने सोचा वो मुसलमान है। उसने कहा वो हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन वो हमें एक बौद्ध गांव में लेके गया। वहां सैनिकों ने कईयों को मार डाला। कई महिलाओं का बलात्कार भी हुआ। हम में से कुछ लोग भाग निकले। फिर हमें बांग्लादेश आने में 5 दिन लगे।
ये दिल दहलाने वाली कहानियां सुनने के बाद हमने देखा कि खाने का बंटवारा कैसे हो रहा है शरणार्थियों के बीच। यहाँ एक कैंप के पास राहत सामग्री से भरा एक ट्रक आकर रुका है। कुछ स्थानीय बांग्लादेशी लोग शरणार्थियों की मदद करने आए हैं, लेकिन ट्रक पर खड़े होकर वो राहत सामग्री शरणार्थियों की ओर फेंक रहे हैं, जिससे लोगों में भगदड़ सी मच गई है। जिसका हाथ सबसे आगे, उसे सामान मिल जाता है, लेकिन कईयों को निराशा का सामना करना पड़ता है। इस तरह के नज़ारे रोज देखने को मिलते हैं। राहत का काम जिस तरह से चल रहा है, उससे जाहिर है कि ये किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार कहती तो है कि वो शरणार्थियों की पूरी तरह से मदद करना चाहती है, लेकिन अगर आप एड एजेंसियों यानी राहत कार्य करने वाली संस्थाओं से बात करें तो मालूम होता है कि वो कहाँ और किस तरह से काम कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध है। सबका कहना है कि और संयोजित रूप से काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तो शरणार्थियों को स्वच्छ खाना और पानी भी नसीब नहीं है। और एक और चीज़ है जिसकी इन सबको बेहद ज़रूरत है, वो है एक पक्की छत की, एक घर की।
इस खास रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और अब उसके पास अमेरिकी विमानों को कोरियाई वायु क्षेत्र से बाहर भी मार गिराने का अधिकार है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इस कथन को बेतुका कहकर खारिज कर दिया है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आज़ादी को लेकर हुए जनमत संग्रह के बाद अब वोटों की गिनती की जा रही है। इराक की केंद्र सरकार के भारी विरोध के बावजूद ये जनमत संग्रह कराया गया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उनकी पार्टी दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी के साथ गए लोगों को फिर से अपनी ओर खींचने के लिए दक्षिणपंथ की ओर नहीं बढ़ेगी। ब्राज़ील की सरकार ने अमेज़न के विशाल सुरक्षित क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की अनुमति देने के अपने विवादित फैसले को वापस ले लिया है। करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका डेनमार्क के बराबर है और माना जाता है कि यहाँ सोना और अन्य खनिज बहुलता में उपलब्ध हैं। मई में अमरीकी जेल से रिहा हुई खुफिया जानकारी लीक करने की दोषी पाई गई पूर्व अमरीकी सैनिक चेल्सी मैनिंग का कहना है कि कनाडा ने उनका आगमन रोक दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा दिन भर। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।